राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupad Jaya Jaya Prabhupad Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले एक सप्ताह से हर शाम को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय में जो श्री कृष्ण की वृंदावन में रास लीला का वर्णन है उसके बारे में चर्चा जारी है और रासलीला तत्व की सही स्थापना करने का प्रयास है, क्योंकि रासलीला के बारे में लोगों के मन में अनेक गलत धारणाएं हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें रासलीला के उत्सव को या लीला को कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा पिछले एक सप्ताह से हुई थी और आज भी इस श्रृंखला का अंतिम प्रवचन होगा। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि हरे कृष्ण, कि रासलीला ये एक बहुत आध्यात्मिक विषय है। रासलीला का कोई संबंध इस संसार से नहीं है। भगवान और वृंदावन की गोपियों की लीला बिल्कुल दिव्य और अलौकिक है, शुद्ध है, पवित्र है। यहां इस संसार में पुरुष और स्त्री का जो संग होता है उससे कोई संबंध नहीं है। यद्यपि वो ऐसे ही दिखता है जैसे इस संसार के संबंध है, परंतु वो है नहीं। और इसी बात को सही तरह से स्थापित करने के लिए कई तरह तरह के दृष्टिकोण से इस विषय का विश्लेषण किया गया है पिछले एक सप्ताह से। तो कल का विषय ये था कि किसी विषय का, ग्रंथ का आदि यदि हम मूल्य समझना चाहते हैं या उसका गुण धर्म समझना चाहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस ग्रंथ को पढ़ने से या उस विषय को सुनने से व्यक्ति के हृदय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम संसार के बातों को सुनते हैं, संसारी बातों को ही बोलते रहते हैं जैसे कि संसार में होता है, तो हमारी चेतना भी संसार में ही बनी रहेगी। हमारी चेतना को हम संसार से ऊपर उठा के भगवान में कभी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम भगवान की बातों को सुने और संसार की बातों में इतना रमण न करें। जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि संसार में लोगों को सुनने के लिए अनेक विषय हैं, सैकड़ों विषय हैं, नृणम संति सहस्रशः, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणम संति सहस्रशः, अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। बीच बीच में बदलिए मत वॉल्यूम को, एक सेट हो गया तो थोड़ा एको हो रहा है। देखिए, तो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि यह संसार में लोगों को सुनने के लिए सैकड़ों विषय हैं और वो इन संसारी विषयों के बारे में सुनते हैं और बोलते हैं और इनके बारे में ही चिंतन मनन करते हैं, इसलिए क्योंकि वो आत्म तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में नहीं जानते हैं। आत्म तत्व ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो वास्तव में सत्य की पहचान होगी, परंतु यदि हम केवल संसार के विषयों में रमण करते रहेंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें पुनर्बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो यदि रासलीला भगवान की ऐसे ही संसार का विषय होता तो फिर अवश्य रासलीला और भगवान की अन्य लीलाओं को सुन के हमारा मन भी संसार में ही रह जाता, परंतु ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सही ढंग से भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का श्रवण करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और संसारी भावनाएं जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से रास लीला भी, जो कि भगवान की लीलाओं में से चरम लीला, सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है, उसका भी श्रवण करने से बहुत ज्यादा लाभ सारे समाज में होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के संदेशों के बारे में समाज में अधिक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यही संसार की भलाई के लिए है। श्रीमद् भागवत में नारद जी बताते हैं कि यदि हम भगवान के वचनों के प्रति आकर्षित होते हैं तो सारा जगत वैकुंठ जगत बन जाएगा। नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया। नारद जी कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है वायसम और दूसरा है हंस। वायसम मतलब कौवा और हंस मतलब हंस, हंस पक्षी आप जानते हैं। तो कौवे को, कौवे का गुण ये होता है कि भले वो सुंदर बगीचे में क्यों ना हो, यदि उसे कोई गंदा स्थान मिल जाता है तो वो सौंदर्य सुंदर स्थान को छोड़कर उस गंदे स्थान में चले जाता है। परंतु हंस ऐसा नहीं होता। हंस एक ऐसे कोई सुंदर रमणीय वातावरण में निवास करता है जहां कमल पुष्प हो, सरोवर हो, जहां पहाड़ हो, हरियाली हो, ऐसे स्थान में हंस रहना पसंद करते हैं। तो इस संसार के जो विषय हैं, इस संसार के समाचार पत्र, यहाँ के उपन्यास, यहाँ के पत्रिकाएं और तरह तरह के जो बातें होती हैं टेलीविजन पे, सिनेमा में, ये सब वैसे तीर्थ स्थान बताए गए हैं जो कौवे जैसे लोगों के लिए है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनको पवित्र नहीं माना गया है, इनको अशुद्ध माना गया है। तो कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल लोगों को बाहर की सिनेमा देखने में बहुत रुचि है और सिनेमा में क्या दिखाते हैं, केवल इस संसार के पुरुष और स्त्री का संबंध ही दिखाते हैं। कोई नायक होते हैं, कोई नायिका होती है, तो ऐसे इन सिनेमाओं को देख के देखते लोग अपना जीवन बिताते हैं, बचपन से ही देखना शुरू करते हैं और फिर अपनी नौकरी आदि को समाप्त करने के बाद भी जब घर में रहते हैं तब भी टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं। तो ऐसे विषयों में रमण करना, नारद जी बोलते हैं ऐसे विषय वायसम तीर्थम है, कौओं का तीर्थ स्थान है। और जो हंस के समान आध्यात्मिक स्तर में स्थित होने वाले लोग हैं वो ऐसे विषयों में रमण बिल्कुल नहीं करते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। नारद जी कहते हैं कि इन संसारी विषयों के विपरीत जो भगवान के विषय हैं वो ऐसे सुंदर विषय हैं जिनका श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने से सारे जगत का कल्याण हो सकता है और सारे विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति की निर्मिति हो सकती है। आजकल समाज में उत्पात, दुख इत्यादि बहुत बढ़ गया है, सब जगह समस्याएं ही दिखाई पड़ रही है। तो इसका एकमात्र उपाय है कि लोगों की चेतना संसार से उठाकर भगवान में लगानी चाहिए। तो ये एक आध्यात्मिक क्रांति है। तो ये क्रांति तलवार का नहीं है, बंदूक और गोलियों की नहीं है, ये क्रांति भगवान के संदेश की है, भगवान के दिव्य संदेशों को, उनके लीलाओं को सब तक पहुंचाना, ताकि सभी लोग समाज में भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। यही सारे समाज के लिए कल्याण का मार्ग है। परंतु आजकल यहां देखा जाता है कि लोग केवल संसार के बारे में सिनेमा, टीवी, पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास में लिखते हैं और करते हैं। इसलिए भक्तों को ऐसी चीजें पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। एक किसी दूसरे शहर में जब हम थे तो एक पत्रकार हमसे मिलने आए थे, तो हमने उनसे कहा कि हमने आपके पत्रिका, आपका जो समाचार पत्र है वो नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला क्यों, तो हमने कहा कि आपके समाचार पत्र में आप ऐसे ऐसे चित्र बताते हैं कि किसी एक अच्छे परिवार में रखने लायक नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति को देखने लायक नहीं है, और जिस घर में बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं उनको भी ऐसे चित्र नहीं देखने चाहिए, लेकिन आप आपकी पत्रिका में ऐसे सब छापते हैं, और साथ साथ में धर्म के बारे में कोई विषय नहीं होता है, और बल्कि कोई लेख आता भी है तो केवल कोई ना कोई निंदा, कोई ना कोई बात, इसलिए नहीं पढ़ना चाहते। तो उन्होंने कहा कि हमारे समाचार पत्र में हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग विषय है, तो आपको जो विषय चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं। ये जो चित्र वगैरह हम देखते हैं, क्योंकि वो थोड़े लोग उनको चाहते हैं तो उनके लिए हम ये भी लेते हैं। तो हमारे ग्राहक और पढ़ने वाले पत्र ऐसे भी हैं। तो हमने कहा कि फिर आपके ग्राहक आपके पास रहने दीजिए, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं हम जैसे जो इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। साथ साथ टेलीविजन के कार्यक्रम में भी ऐसे ही है। आजकल यह समझा जाता है कि टेलीविजन गांव गांव तक फैलाने से ये प्रगति के लक्षण है। लोग सोचते हैं कि हर एक घर में टीवी होना चाहिए, टीवी नहीं है तो वो घर कैसा घर है। और गांव गांव में पहुंचाने से बेचारे मासूम गांव वालों का चित्त भी नष्ट किया जाता है, और टेलीविजन में तो कोई अच्छी बात दिखाई नहीं देती प्राय, तरह तरह के सिनेमा और न जाने क्या क्या और दिखाते हैं, विरला ही कोई अच्छा कार्यक्रम दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से पत्रिकाएं हैं, उपन्यास हैं। तो जो लोग सज्जन हैं, जो लोग वास्तव में समाज का हित चाहते हैं, समाज में कुछ धर्म की स्थापना चाहते हैं, हम सबको अब इन लोगों से कहना चाहिए कि यदि आपकी पत्रिका में, आपके समाचार पत्र में, आपके टेलीविजन के कार्यक्रम में आप ये सब दिखाने वाले हैं तो हमें नहीं देखना है। हम आपके पत्रिका को नहीं खरीदेंगे, समाचार पत्र को नहीं खरीदेंगे, नहीं आपके कार्यक्रम को हम देखेंगे। क्योंकि ये जो भी होता है केवल व्यवसाय के दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग ये पसंद करते हैं तो हम ये ज्यादा से ज्यादा इसी चीज को हमारे पत्रिका में या टेलीविजन के कार्यक्रम में दिखाएंगे तो हमारा बहुत लाभ हो जाएगा, भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत मुनाफा हो जाएगा। लेकिन यदि अधिक से अधिक संख्या में लोग उनको ये बताएंगे कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें ऐसी चीजें देखने नहीं है, नहीं हमारे घर में रखनी है, तो फिर धीरे धीरे वो जब वो समझेंगे कि हाँ लोग ये पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी अपने कार्यक्रमों को आदि वो थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास करेंगे। आजकल धन ये बहुत शक्तिशाली भाषा बन गई है सारे समाज में। जब लोगों को पता चलेगा कि हम यदि ऐसे चित्र आदि सब विषय के बारे में प्रचार करेंगे हमारे पत्रिकाओं में, टेलीविजन प्रोग्राम कार्यक्रम में, तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, तो फिर वो अपनी चीजों को बदल देंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ऐसे विषयों में रमण नहीं करें जहां केवल हमारे संसार की वासनाओं को बढ़ाया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला आदि की थी, ताकि संसार के झूठे नायक नायिकाओं की बातों को छोड़कर हम जो असली नायक हैं और नायिकाएं हैं उनके बारे में हम कुछ सुने और ऐसा उनकी कथा आदि लीला सुनने के बाद भक्तों से ग्रंथों से जैसे श्रीमद् भागवत है तो हमारा हृदय भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये है प्रमाण, ये है सबूत कि ये सब लीलाएं भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। यदि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला भी भौतिक होती तो लोगों का हृदय शुद्ध नहीं हो पाता और नहीं इतने बड़े बड़े संत महात्मा भक्त अनादि काल से भगवान की रास लीला को बार बार सुनते, स्मरण करते, बोलते, लिखते उसके बारे में। तो कभी भी रास लीला या भगवान की लीला, श्री कृष्ण, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले हम बता रहे थे कि महाराष्ट्र में किसी एक पत्रिका में एक बड़ा लेख लगातार 3-4 दिन आ रहा था कि श्री कृष्ण नरक में हैं क्योंकि उन्होंने बहुत गलत कार्य किए हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि श्री कृष्ण कौन है और श्री कृष्ण के कार्य कैसे होते हैं, ये ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए अज्ञानवश ऐसे लेख लिखते हैं पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, जो हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। तो कितना दुष्प्रचार होता है, कितना हिंसा होती है सारे समाज में, तरह तरह की हिंसा होती है। एक होती है कि हम किसी को अपने शब्दों से उनका मन दुखाएं, उसके बाद और एक हिंसा होती है कि किसी के ऊपर हम प्रहार करें उसके शरीर के ऊपर, और इससे ज्यादा हिंसा है किसी के भगवान में श्रद्धा को नष्ट करने का प्रयास करना या उसके मन में धर्म के प्रति भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो आजकल हमारे सारे समाज में ये हिंसा बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है प्रगति के नाम पे, क्योंकि लोगों के मन में आजकल भौतिकता, धन कमाना, भोग करना, ये इतना तीव्र हो गया है कि धार्मिक भावना को अपने हृदय में जागृत करना ये एक महत्वपूर्ण बात है ऐसा वो नहीं समझते हैं। उनको रुचि नहीं है भगवान के बारे में सुनने में। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है, और श्री कृष्ण जब अपनी लीला करते हैं तो उनकी लीला बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था में होती है, और जो निंदा करते हैं बल्कि वो नरक में जाएंगे, श्री कृष्ण नरक में नहीं जाएंगे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में अंततः कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय वहने सर्व भुजो यथा। वो कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े ईश्वर होते हैं, ईश्वर अर्थात जिनके जो बहुत शक्तिशाली है, अपने पुण्य कार्यों के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा। तो ऐसे बड़े बड़े ईश्वर हैं जो देवता हैं, जो सारे ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभालते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं सारे ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में। जैसे इंद्रदेव हैं, वो वृष्टि का विभाग संभालते हैं, वरुण देव हैं, वो जल का विभाग संभालते हैं, वायु देव हैं, वो पवन का विभाग संभालते हैं, अग्निदेव अग्नि का विभाग संभालते हैं, ब्रह्मा जी वो सृष्टि करता है, गौण सृष्टि करता है, मुख्य सृष्टि करता तो भगवान है, परंतु ब्रह्मा जी उनके प्रतिनिधि हैं, एक अधिकारी व्यक्ति हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तो इन सब को ईश्वर कहा जाता है क्योंकि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमसे कहीं ज्यादा उनकी शक्ति है। हम मनुष्य जो इस पृथ्वी लोक में निवास करते हैं, हमारी शक्ति तो बहुत कम है इन देवताओं की तुलना में। तो कभी कभी ऐसे होता है कि क्योंकि देवताओं की शक्ति हम सबसे इतनी ज्यादा है, तो कोई व्यक्ति अज्ञानवश देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं। परंतु देवता भगवान नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ये देवता गण भी जब कभी कभी धर्म का उल्लंघन करते हैं, या ऐसे प्रतीत होता है कि वो धर्म का उल्लंघन करते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसाम, कि यदि कोई देवता गण ऐसे कोई विचित्र कार्य करते हैं, ऐसा कोई साहस करते हैं धर्म या मर्यादा का व्यतिक्रमण करने के लिए, तो उनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि के समान है। वहने सर्व भुजो यथा, वहनी मतलब अग्नि। जब हम एक आग के अंदर ईंधन डालते हैं या किसी भी वस्तु को डालते हैं, तो वो वस्तु जल जाती है और आग तो और भी बढ़ने लगती है प्रज्वलित रूप से। आग के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु के ऊपर परिणाम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब शक्तिशाली देवता हैं जो ब्रह्मांड में निवास करते हैं, ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभालते हैं। वो यदि ऐसे मर्यादा या धार्मिक व्यतिक्रमण करते भी हों, तो उनको निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो तेज है, वो शक्ति है। वो ऐसे कार्य को करते भी करके करने के बाद भी अपने कर्मों के फलों से स्पर्श नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे तथाकथित पाप का परिणाम उनको स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो पचन शक्ति है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी पचन शक्ति है। यदि हम ज्यादा खाएंगे सोचने के लिए कि हम बहुत हृष्ट पुष्ट होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होगा? हृष्ट पुष्ट होने के बजाय हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम जब संसार में काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कौन हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हम देवताओं की जो ईश्वर हैं ब्रह्मांड के, उनकी नकल नहीं कर सकते। हम अग्नि के समान तेजस्वी और शक्तिशाली नहीं हैं। हम कोई गलत काम करेंगे, धर्म के विरुद्ध कोई बात कहेंगे या करेंगे, तो परिणाम अवश्य हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग ईश्वर नहीं हैं। हम तो साधारण इस मर्त्य लोक के निवासी हैं। भले हम राजा हो या रंक हो, अमीर आदमी हो गरीब आदमी हो, हम अंततः मनुष्य हैं। इसलिए भगवान ने जो धार्मिक सीमाएं हम सबके लिए बनाई हैं, उनका कठोरता से हमें पालन करना चाहिए, फिर हमारा जीवन सुखी रहेगा। और फिर आगे शुकदेव गोस्वामी एक महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है, तो हम इस श्लोक का आज उच्चारण करेंगे। नैतत् समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्याः यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्। नैतत् समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्याः यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्। नैतत् तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मोढ्यात् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम् तत्समाचरे जातु तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्।
अनुवाद: जो महान नियंता नहीं है उसे मन से भी कभी शासन करने वाले महान व्यक्तियों के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की समुद्र के विष को पीने का प्रयास करने वाले व्यक्ति यदि वह रुद्र नहीं हो नष्ट हो जाएगा। तो शुकदेव गोस्वामी यहां महत्वपूर्ण बात बताते हैं, न एतत् समाचरे जातु, निश्चित ही कभी भी हमें ऐसे कार्यों का आचरण नहीं करना चाहिए, मनसा अपि मन में भी नहीं करना चाहिए, यदि हम ईश्वर नहीं है तो। अर्थात जो महान ईश्वर होते हैं उनकी नकल हमें मन में भी नहीं करनी चाहिए। उदाहरणार्थ सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं, यथा अरुद्रः अब्धिजं विषम्। आपको ये कथा पता होगा अवश्य, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। बहुत साल पहले देवतागण और असुरगण एकत्र हुए थे समुद्र का मंथन करने के लिए। उस समुद्र से वो अमृत को निकालना चाहते थे, तो पर्वत भी तैयार हो गया, भगवान भी वहां तैयार हो गए उसका आधार बनने के लिए, वासुकी सांप रस्सी बन गए, और देवतागण एक ओर असुरगण दूसरी ओर वो मंथन करने लगे। परंतु मंथन करने से तुरंत सबसे पहले अमृत के बजाय एक बहुत ही खतरनाक विष, हलाहल विष उत्पन्न हो गया। और जब विष बढ़ने लगा तो ऐसे लगा कि ये सारा समुद्र विष का हो गया है, और देवता और असुरगण दोनों बहुत भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए, इतना विष सब जगह फैल जाएगा तो हम सबकी मृत्यु तो होगी लेकिन जितने ब्रह्मांड में लोग हैं उनकी भी मृत्यु होगी, तो क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने शिवजी को बुलाया, उनसे निवेदन किया कि कृपया हमें बचाइए। तो शिवजी ने आके उस सारे विष के समुद्र को कम किया, एक बूंद के समान कर दिया, अपने मुट्ठी में रखा और फिर उसका पान कर दिया। परंतु उसको निगला, पूरी तरह से निगला नहीं उन्होंने, अपने कंठ में ही उन्होंने उस विष को रखा और आज तक भी शिव जी के कंठ में वो नीले रंग का विष अभी तक दिखाई पड़ता है। इसलिए शिव जी का और एक नाम है नीलकंठ। तो केवल शिव जी जिनका नाम है रुद्र वो ऐसा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भी कर सकता हूं तो मैं भी विष पी लूंगा, तो सुखदेव जी कहते हैं विष के समुद्र की बात तो दूर है, विष का एक बूंद पीने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जो व्यक्ति रुद्र या शिव जी नहीं है उसको शिव जी की नकल नहीं करनी चाहिए, और यदि करेगा तो क्या होगा, विनश्यति विनश्यति आचरण मौढ़्याद, ऐसा आचरण करने से उसका विनाश निश्चित है। आपने ये मूढ़ शब्द अवश्य सुना होगा भगवत गीता में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अज्ञानी होते हैं, मूढ़ होते हैं, मूढ़ मतलब जो अज्ञानी हैं या मूर्ख हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं हे अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम, जब मैं एक मनुष्य समाज में आकर साधारण व्यक्ति की तरह बर्ताव करता हूं तो ये लोग भी मुझे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को वो नहीं जानते हैं, वो नहीं समझते हैं कि मैं भगवान हूं। मम भूतम महेश्वरम, मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, ऐसे नहीं समझते हैं वो, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये मूढ़ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां भी सुखदेव गोस्वामी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं विनश्यत्याचरण मौढ़्याद। तो मौढ़्याद मतलब मूर्खता से, अज्ञान से यदि कोई ईश्वरों की नकल करना चाहे तो उसका विनाश निश्चित है। तो जब इस दुनिया के जो व्यवस्थापक हैं, जो जितने भी ईश्वर हैं, देवतागण हैं, उनका भी नकल करने का प्रयास करने से हमारा विनाश हो जाएगा, तो उनके जो स्वामी हैं, उनके जो उद्गम हैं, जिनसे देवताओं की शक्ति उत्पन्न होती है, जिनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये देवतागण, ये जो संसार के ईश्वर अपने ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभाल रहे हैं, उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की नकल यदि हम करना चाहें तो हमारी दशा क्या होगी, तो अवश्य इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। यहां ब्रह्मांड के जो देवतागण हैं वो ईश्वर हैं, अवश्य ईश्वर शब्द का तात्पर्य है जो नियंत्रण करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे अनेक लोग ब्रह्मांड में होते हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, तो इनको ईश्वर कहा जा सकता है, परंतु वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान एकमात्र व्यक्ति हैं जो परम ईश्वर हैं। ईश्वर होना कोई बड़ी बात नहीं, परम ईश्वर केवल एक व्यक्ति हो सकते हैं और वो है भगवान, और भगवान ही समस्त शक्ति के स्रोत हैं। जितने भी ईश्वर हैं उन सब को भी उस परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही बल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मांड के ईश्वरों की शक्ति कहां से आती है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर अनेक हो सकते हैं लेकिन परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है, और वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनका विग्रह, उनका रूप सच्चिदानंद है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, आदि ही वो सबके आदि हैं, उनका नाम गोविंद है, सर्व कारण कारणम, वो समस्त कारणों के कारण हैं, हमारे कारण हमारे माता पिता हैं, उनके कारण उनके माता पिता हैं, ऐसे पीछे जाते 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 कहां तक पहुंचेंगे? भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण विराम है जहां सब कुछ रुक जाता है, उनका कोई उद्गम नहीं है, वही सब चीजों के स्रोत हैं या उद्गम हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि परमेश्वर है, जो कि समस्त ब्रह्मांड के ईश्वरों को भी नियंत्रण करता है, तो उनकी नकल करने से तो अवश्य कितनी हानि होगी, ये सोचने वाली बात है। तो जब अज्ञानवश लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की निंदा करते हैं और इतना भी साहस करते हैं कि मैं भी रासलीला करूं, तो कितना नुकसान हो जाएगा। कई बार लोग जब हम जगह जगह जाते हैं तो लोग ऐसी धारणाएं हमारे सामने रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किया, अनेक गोपियों से नृत्य किया, तो हम भी क्यों नहीं करें। पहली बात तो हम एक सप्ताह से समझा रहे हैं कि भगवान की रासलीला ये संसार के पुरुष स्त्रियों के संबंध की तरह बिल्कुल नहीं है, और दूसरी बात हम भगवान कृष्ण का नकल नहीं कर सकते। यदि हम भी नकल करना चाहें और अनैतिक कार्यों में हम चले जाएं तो हमारा विनाश निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, जो कि बहुत अद्भुत कार्य है, वो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं। तो यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की नकल करनी है तो उनको श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो उठाया था उस कार्य की नकल भी करनी चाहिए। और भगवान ने जब रासलीला भी की थी और द्वारका में 16,108 रानियों से विवाह भी किया था, तो उन्होंने अपने आप को विस्तार किया था, और जितने गोपियां थीं, जितने द्वारका में रानियां थीं, उतने रूपों में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, और हर एक गोपी को वृंदावन में और हर एक रानी को द्वारका में ऐसे प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ में है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है? भले वो ब्रह्मांड का ईश्वर भी क्यों ना हो, वो भी नहीं कर सकता। बल्कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो भी भ्रमित हो गए थे एक बार जब श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति का बल प्रदर्शित करने का प्रयास किया था, लेकिन स्वयं वो भ्रमित हो गए। उनको लगा कि मैं एक जुगनू के समान हूं और श्री कृष्ण सूर्य के समान है। जुगनू का जो चमकता हुआ प्रकाश है, शरीर है, वो तो केवल रात के समय सुंदर दिखता है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य की का प्रकाश जब सब जगह फैल जाता है, तो जुगनू का प्रकाश का क्या मूल्य है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम भगवान की शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं या उसका अनुभव नहीं करते हैं, तब ये संसार के लोगों की शक्ति हमें कोई विशेष लगती है। परंतु जब हम जान जाते हैं कि भगवान कौन है और हम सब इस दुनिया के लोग कौन हैं, हमारे बीच में अंतर कितना है, तब हम संसार के लोगों के कार्यों के बारे में सुनने की रुचि, बोलने की रुचि, पढ़ने की रुचि, देखने की रुचि, ये सब रोक देंगे, ये रुचि खत्म हो जाएगी और भगवान की सुंदर लीलाओं में हम रमण करना आरंभ करेंगे। और भगवान की कथाओं में इतना आनंद है, इतनी रुचि है कि एक बार कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनता रहे तो उसके जीवन में ऐसा एक मोड़ आएगा जब वो भगवान के शरण में निश्चित रूप से आ जाएगा और संसार में रुचि बिल्कुल नहीं रखेगा। कपिल देव जो कि भगवान के अवतार हैं, वो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा यज्जोष्णादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरे भक्तों के संग में आते हैं और मेरी कथाओं के बारे में सुनते हैं, मेरे जो लीलाएं हैं, मेरे जो उपदेश हैं, मेरे संदेश हैं, उनके बारे में भक्तों के संग में श्रवण करते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति, कुछ होने लगता है, हृत कर्ण हमारे हृदय के लिए और हमारे कानों के लिए, रसायना कथा धीरे 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 से ये कथाएं बहुत रसमय लगने लगती हैं, स्वादिष्ट लगने लगती हैं, शुरुआत में अच्छी नहीं लगती हैं। हमको टेलीविजन में और सिनेमा की बातें ही अच्छी लगती हैं शुरुआत में, परंतु जैसे जैसे भगवान की कथाएं हम सुनते जाते हैं वैसे वैसे भगवान के प्रति रुचि और आकर्षण बढ़ने लगता है। तज्जोषनाद आश्व अपवर्ग वर्तमनी। और फिर कपिल देव कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति के पथ में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, और क्रमशः हमारी प्रगति होते रहती है और निश्चित ही एक दिन हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमारे जीवन की सफलता है। और फिर जब हमारी मृत्यु होगी तब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अंतकाल में भगवान कृष्ण का स्मरण करके हम भगवान के गोलोक वृंदावन में लौट के जा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को पीलिया की बीमारी होती है, जॉन्डिस की, तो जब वो कोई मीठे वस्तु को चखता है तो मीठे वस्तु भी उसे कड़वा लगता है, लेकिन पीलिया की बीमारी के लिए उपाय एक ही है और वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस मीठा होता है, और जब ये पीलिया का मरीज इस गन्ने के रस को पीता है उसे कड़वा लगता है। तो ये कड़वापन गन्ने के रस में नहीं है, गन्ने का रस तो अभी भी मीठा ही होता है, दोष तो उस मरीज में है, इसलिए मीठी चीज को वो कड़वा समझ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीता जाएगा उसका शरीर ठीक होता जाएगा और धीरे धीरे गन्ने के रस का स्वाद, असली स्वाद जो है वो चख पाएगा। ठीक उसी प्रकार से भले हमें शुरुआत में भगवान की कथाओं में इतनी रुचि न लगे, फिर भी यदि हम भगवान के भक्तों के संग में आते रहें, बार बार आते रहें, प्रतिदिन आते रहें, और भगवान के दिव्य ग्रंथों को भी हम प्रतिदिन ध्यान पूर्वक पढ़ें, और हमारे परिवार में भी हम एक ऐसा ही आध्यात्मिक भक्तिमय वातावरण बनाएं, तो हम भी इसी प्रकार से प्रगति करेंगे और भगवान की भक्ति में हमारी रुचि बहुत तीव्र हो जाएगी। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो यदि हमारे घर में भी हमने ऐसे वातावरण बनाए रखा, न केवल हमारे भलाई के लिए होगा लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। यदि हमारे बच्चों को केवल हम टेलीविजन और सिनेमा दिखाएंगे और संसार का विषय दिखाएंगे तो वो भी केवल उसी संसार के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मनुष्य जीवन को कभी सफल नहीं कर पाएंगे। तो शुकदेव गोस्वामी यहां बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, इस बात को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए इसके पहले कि हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की निंदा करें। तो इसके साथ हम ये 8 दिन की श्रृंखला जिसका शीर्षक था रास लीला तत्व, इसको हम यहां समाप्त करते हैं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कल प्रातः सुबह यहां पे कृष्ण कथा और होगी कृष्ण जन्म के बारे में, और शाम को भी यहां प्रवचन होगा, नाट्य लीला होगी, अभिषेक, कीर्तन, और बाहर बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शन आदि हैं आप सबके आनंद के लिए। तो कल भी आइएगा अवश्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े भक्ति भाव से मनाइए हम सबके साथ में, और दिव्य आनंद को प्राप्त करें। तो यदि आपके कोई प्रश्न इस समय है तो आप अवश्य पूछिएगा, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, माइक है? माइक नहीं है, आप पूछना है? हाँ पूछ लीजिए, माइक नहीं है। प्रश्न ये है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि अन्य धर्मों में एक ही ग्रंथ होता है, लेकिन हमारे धर्म में इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? जैसे वैसे तो मूल सारा सार तो भगवद गीता है, जो भगवद गीता को समझ लेता है वो सारे वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को समझ पाएगा। परंतु भगवान के बारे में जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा विषय है। यदि हम किसी को पूछें कि आप विद्यालय में जाते हो, तो कहेंगे हाँ, तो आपका केवल एक ही किताब क्यों नहीं है, आपके इतने सारे किताब क्यों हैं? भूगोल है, गणित है, इतिहास है, तरह तरह के विषय आपके हैं, तो एक ही किताब, एक ही विषय आपका क्यों नहीं है? क्योंकि संसार का ज्ञान इतना विशाल है, इतना विस्तार है कि तरह तरह की किताब चाहिए जिनमें अलग अलग तरह से संसार के बारे में ज्ञान दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से भगवद गीता में सारे शास्त्रों का सार है, सारे भगवत ज्ञान का सार है। परंतु भगवान का ज्ञान केवल एक पुस्तक तक सीमित नहीं है, भगवान तो असीमित है। असीमित असंख्य शास्त्र भी होते तो भगवत ज्ञान उसमें संपूर्ण बताया नहीं जा सकता। ऐसे बताया जाता है कि भगवान के ही विस्तार जो अनंत शेष हैं, उनके सहस्र वदन हैं, सैकड़ों मुख हैं उनके, और अनादि काल से वो भगवान का गुणगान करते आए हैं, लेकिन आज तक वो भगवान की कथाओं के अंत तक नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब है जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं, उनके उपदेश आदि भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सूत्र रूप में केवल बताया है, केवल एक झलक मात्र दी है उन्होंने। यह झलक भी हमारे लिए इतना ज्यादा हो जाता है, और आगे चल के भगवद गीता से श्रीमद् भागवत तक हम पहुंचते हैं, और ऐसे अनेक शास्त्र हैं। परंतु हां, इन समस्त शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि पढ़ें तो जो हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए ज्ञान है वो हमें मिल सकता है। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी, एक मिनट, पीछे वो आए हैं सामने प्रश्न करने के लिए। हाँ प्रश्न यह है कि भगवान के धाम में असुर नहीं होते हैं, तो कंस भी तो असुर था, उससे वो पैदा हुआ था कि नहीं? हम जब कह रहे थे कि भगवान के धाम में असुर नहीं होते हैं, हम वो परव्योम वृंदावन की बात कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है उसकी बात कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण उसी धाम को यहां प्रकट कराते हैं भौतिक सृष्टि के अंदर, यहां असुर होते हैं और इनका वध अवश्य श्री कृष्ण करते हैं, परंतु वहां भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसे असुरों का जन्म तो नहीं होता है। ठीक है, जब भगवान यहां आते हैं लीला करने के लिए तो गोलोक वृंदावन में कौन रहते हैं, ये प्रश्न है। क्या वहां गोलोक वृंदावन खाली नहीं हो जाता, ये प्रश्न है। कृष्ण भगवान है ना, तो उनको अनगिनत स्थानों में एक ही समय में उपस्थित रहना कोई कठिन बात नहीं है। यदि हम यहां आज बैठे हैं तो घर में नहीं रह सकते, यदि हम घर में बैठेंगे तो उसी समय यहां उपस्थित नहीं हो सकते, दो जगह में एक आदमी नहीं रह सकता एक ही समय। लेकिन भगवान एक ही समय अनगिनत स्थानों में उपस्थित रह सकते हैं केवल अपने आप को विस्तार करके, ये है भगवान। इसलिए जब भगवान यहां प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, अपने धाम को भी प्रकट कराते हैं, तो उनका धाम आध्यात्मिक जगत में तो चलते रहता है। यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब इस सृष्टि का नाश होता है, भगवान के धाम का नाश कभी नहीं होता है। तो उनका धाम भी जब प्रकट होता है, श्री कृष्ण भी वहां जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनका धाम भी वैसे ही वहां पे रहता है। ठीक है, तो यहां बताया जाता है कि परव्योम वृंदावन और भौम वृंदावन के बीच में अंतर बताया गया था। तो क्या फिर परव्योम वृंदावन में गोवर्धन धारण करने की लीला भी होती है? इसका उत्तर यह है कि वहां परेशान करने के लिए तो कोई इंद्रदेव तो नहीं है। इंद्रदेव को बाद में बहुत पछतावा हुआ। ये तो भौम लीला है, भौम वृंदावन लीला। वहां गोवर्धन अवश्य है, यमुना अवश्य है परव्योम वृंदावन में। जब यहां जो व्रज में है वो वहां भी है गोलोक वृंदावन में, परंतु मूल रूप से जो लीलाएं वहां होती हैं वो यहां भी होते हैं, परंतु यहां ऐसे थोड़े विशेष लीलाएं होती हैं, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि के भीतर भगवान ने अपने धाम को प्रकट कराया है। ये कहा गया है कि नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह भी सुनने में आता है कि हमें पद चिन्हों में चलना चाहिए। हाँ अवश्य, दोनों में बहुत अंतर है। एक है अनुकरण करना, दूसरा है अनुसरण करना। अनुकरण करना मतलब नकल करना, लेकिन अनुसरण करना मतलब पद चिन्हों में चलना। पद चिन्हों में चलना मतलब उनके आदेश के अनुसार चलना। भगवान के पद चिन्हों में हम हर समय चल नहीं सकते, लेकिन उनके जो भक्त हैं उनके भक्तों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए, और भगवान के पद चिन्हों में इस दृष्टि से चलना चाहिए कि उनके आदेशों का पालन हमें करना चाहिए। प्रश्न समझ नहीं आए। भगवान, प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम भ्रांति में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, श्री कृष्ण अवश्य धर्म की स्थापना करने आते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं और हम सबको सिखलाते हैं कि कैसे हमें धर्म का पालन करके मर्यादा के सीमा के भीतर रहना चाहिए। परंतु इस धर्म को, इस मर्यादा को बनाने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण इस धर्म और मर्यादा से बंधे हुए नहीं हैं, सीमित नहीं हैं। तो भगवान एक उदाहरण रखने के लिए अवश्य जब यहां प्रकट होते हैं तो धर्म का पालन करते हैं, जैसे जो हमारे लिए है। परंतु कभी कभी वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं भगवान हूं। धर्म पालन करना मनुष्यों के लिए है, आप सब के लिए है। भगवान कहते हैं आप सब, मतलब हम सब। और मैं जब अवतीर्ण होऊंगा यहां पर, तो मैं भी, क्योंकि मनुष्य समाज में प्रकट हुआ हूं, मैं भी मर्यादा का पालन करूंगा। लेकिन भगवान को, भगवान जब धर्म का पालन करते हैं तो वो केवल एक लीला करते हैं, नाटक करते हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं है धर्म का पालन करने के लिए, वही परम धर्म है। तो भगवान कभी कभी जानबूझ के ऐसे संसार के नियमों का उल्लंघन करते हैं ये स्थापित करने के लिए कि वही भगवान है। और ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है जिसकी स्थापना वो करने आए हैं कि मैं परम सत्य हूं और अन्य जितने भी सत्य हैं वो मुझ पर आधारित हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है अर्जुन, जितने भी चीजें हैं संसार में वो सब मुझ पर आधारित होते हैं। तो इस बात को स्पष्ट बताने के लिए कि वही भगवान है, इसलिए वो यहां आते हैं। थोड़ा बड़े अक्षर में लिखना चाहिए, क्या लिखा है समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अब थोड़ा कीर्तन करते हैं थोड़ी देर, और फिर यहाँ पे नाट्य लीला होगी और थोड़ी सूचनाएं भी हैं, ठीक, कि अभी कीर्तन के बाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. सर्वप्रथम हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की तरफ से सभी आए हुए भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे कितनी बड़ी संख्या में